الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث وبعدا لقوم لا يؤمنون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو آیت نمبر 42 سے 50 سورہ مؤمنون کی ان کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تھا اور تفسیر کر کلاس میں شروع کر لی تھی، اور اس میں ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، رائٹ، تو رسولوں کا سلسلہ بھی لگاتار رہا، ٹھیک ہے. ہادی کہتے ہیں ہدایت دینے والا، ٹھیک ہے. اور یہ جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ہادی والا جو کانسیپٹ ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ عمل والا کانسیپٹ، کہ بھئی ایک انسان عمل کرتا ہے لیکن اس کو فاعل کہہ دیتے ہیں، عمل کرنے والا فاعل ہوتا ہے، لیکن فاعل حقیقی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہادی کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ ہدایت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، ہادی حقیقی، لیکن ایک انسان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو انسان کو بھی ہادی کہہ سکتے ہیں. اس وجہ سے ہادی نام رکھنا یہ جائز ہے، بلکہ اچھے ناموں میں سے ایک نام ہے ہادی رکھنا، ٹھیک ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہدایت تو اللہ رب العزت دیتے ہیں تو انسان کو ہادی کیسے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہادی برحق کا لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے نا، اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے، خالق تو نہیں ہے، مخلوق ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہادی کا سلسلہ جو ہے وہ لگاتار جاری رکھا، اور یہ لوگ یعنی جو امتی تھے، جو لوگ تھے، تو انہوں نے بھی پیدر پہ ان لوگوں کو جھٹلایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس جھٹلانے کے باعث ان لوگوں کو باعث عبرت بنا دیا، کہانیاں بنا دیا لوگوں کے لیے، عبرت کی کہانیاں، عبرت ناک. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فبعد لقوم لا یؤمنون والا جو ہے وہ انتہائی جلال والا خطاب فرمایا ان لوگوں کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلاصہ تفسیر میں اس کا ترجمہ کیسے فرمایا کہ سو خدا کی مار ان لوگوں پر جو انبیاء کے سمجھانے پر بھی ایمان نہ لاتے تھے، ٹھیک ہے نا. یعنی اتنی بڑی، سب سے بڑی نعمت، کل کافی تفصیل سے بات ہو چکی کہ سب سے اچھا، تو انسان بغیر ہادی کے ہدایت کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس کی وجوہات اگر آپ بتائیں تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں وہ پرانے بھی ہیں، سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ سمجھ میں بھی آتی رہتی ہے. تو ہدایت تک پہنچنا ہادی کے بغیر ممکن کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیا وجوہات بتا سکتے ہیں آپ؟ जी हम इंतजार कर रहे हैं जब तक हम विंडोज एडजस्ट करते हैं, क्योंकि जूम तो रीसेट हो गया था, तो वो पार्टिसिपेंट विंडो और चैट विंडो ये आजाद अपने सामने खोल के रखता है। तो सवाल ये है कि हादी के बगैर हिदायत तक क्यों नहीं पहुंचा जा सकता? जी चला, खवातीन जल्दी से जवाब देना शुरू कर देती हैं, मर्द जरा सोचते रह जाते हैं। जो मिक्सर आर पर हैं तो वो तो सवाल का जवाब नहीं दे सकते, तो उनसे यही गुजारिश है कि जूम जो सेशंस हैं उनके ऊपर जगह है काफी, स्पेशली मेंस वाले पर, तो आप वहाँ आ जाएं। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो जिन्होंने आपको बताया है क्लास का उनसे पूछ लें कि भाई लिंक भी बता दें हमें, तो आप मेंस लिंक के ऊपर आ जाएं। दे हैव ट्रू इल्म ऑफ दीन एंड विदाउट देम वी कैन नॉट गेट हिदाया। तो भाई आप ट्रू इल्म ऑफ द दीन हासिल कर लें, पढ़ लें जाकर के किताबों से। डिस्ट्रैक्शंस डिविएट यू इजिली, क्योंकि ये सुन्नत तरीका है। बहुत माशाल्लाह, अच्छा जवाब दिया, क्योंकि ये सुन्नत तरीका है। अच्छा, तो वजह सुन्नत तरीका तो ये है, लेकिन यानी हम तो एक अकली लेवल पे बात कर रहे हैं ना कि क्यों नहीं पहुंच सकते, क्योंकि शैतान और नफ्स भी अपने काम में लगे हुए होते हैं शैतान की वजह से। ही गाइड्स वेयर वी आर अनक्लियर, वेयर वी आर अनक्लियर, जहाँ हम अनक्लियर होते हैं वहां पर हाथी गाइड करता है, और अगर हम अनक्लियर ना हो तो हम बगैर हाथी के पहुंच जाएंगे रास्ते के ऊपर, ठीक है ना? यानी जहां हम अनक्लियर ना हो तो वहां पर हाथी के बगैर काम चल जाएगा, नहीं ऐसा भी नहीं है। व्हेन यू हैव अ गाइड द हाथी ब्रिंग्स यू बैक इन ट्रैक व्हेन दे सी यू गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक, शर से महफूज रहने के लिए शैतान के, ठीक है? यहाँ पे जवाब दिया है कि निस्बत ही जरूरी है, तो ये सवाल तो ये नहीं था जिसमें आपने ये जवाब दिया है कि निस्बत भी जरूरी है। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत जवाब है कि निस्बत भी जरूरी है, ये सवाल का जवाब बिल्कुल भी सही नहीं है और बहुत ही गलत सोच की अक्कासी करता है एक्चुअली। सोहबत वाला दीन जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख शैतान है। एंड ही गाइड्स ऑन व्हाट इज मैंडेटरी एंड व्हाट्स ऑप्शनल, नहीं। देखें इसकी सीधी सीधी दो रीजंस हैं, एक तो ये है कि अगर आपके पास कोई रास्ता बताने वाला ना हो तो अब आप रास्ते पे कैसे पहुंचेंगे, कैसे रास्ता तलाश करेंगे, कैसे आपको रास्ते का पता चलेगा कि सही है गलत है, उसके लिए आप अपनी अकल इस्तेमाल करेंगे ना, ठीक है ना? अकल है, दिमाग है इंसान के अंदर, और दिमाग के अंदर जो है वो एक अकल की फैकल्टी है, सोच समझ की सलाहियत है, तो अब आप अपनी वो सोच समझ की सलाहियत इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मसला इस सोच समझ की सलाहियत इस अकल के साथ ये है कि ये अकल जो है ना ये बहुत महदूद होती है, अकल जो है वो बहुत महदूद होती है, लिमिटेड होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है ना? जितना आपके पास इल्म होगा अकल भी उतना ही फंक्शन कर सकती है, जितना इल्म मौजूद है, तो इल्म से जो है ना वो अकल की बाउंड्रीज बन जाती हैं, यानी जितना इल्म है अकल उससे उससे बाहर जा करके जो है वो जान नहीं सकेगी, क्योंकि इल्म उसका थोड़ा है, ठीक है? तो आप अकल की वजह से इल्म रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, सॉरी, इल्म की वजह से अकल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बाउंड हो जाती है। और दूसरी चीज ये भी है अकल के साथ कि इंसान की अपनी जो तबीयत होती है, मिजाज होता है, उसके अंदर जो फीलिंग्स होती है ना, तो वो उसकी अकल के ऊपर असरअंदाज करती है, असरअंदाज होती है, ठीक है? तो अगर उसका इल्म सही होता भी है, उसने इल्म हासिल कर भी लिया, लेकिन उसका मिजाज जो है उसके अंदर कोई खराबी है, तो वो मिजाज की खराबी जो होती है ना उसको उस सही इल्म के ऊपर अमल नहीं करने देती, ठीक है? मिजाज की खराबी की वजह से अगर उसको इल्म हासिल हो भी जाए तो उसके ऊपर अमल नहीं करने देती उसकी मिजाज की खराबी, ठीक है ना? यानी जिसको कि आप नफसानी बीमारी कह लें, वो नफसानी बीमारी जो होती है वो इल्म के ऊपर अमल करने से रोक देती है, ठीक है? तो बगैर हादी के इंसान सही रास्ते का तयन अपनी अकल की बुनियाद पर नहीं कर पाता, क्योंकि अकल बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, उसको तो आलमुल गैब की चीजों का पता ही नहीं होता, इल्म ही नहीं होता अकल को कि भाई मरने के बाद क्या होने वाला है, और अल्लाह ताला जो है वो हमसे क्या चाहते हैं, क्या हमें यानी क्या हमसे नहीं चाहते हैं, ठीक है ना? हमें इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, हम इस दुनिया के बाद कहाँ चले जाएंगे, हमें इस दुनिया के अंदर क्या करना है, ये इल्म तो अक्ल हासिल ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये इल्म तो मौजूद ही नहीं है कहीं, ठीक है ना। यानी आपको पत्तों को देख करके और पहाड़ों को देख करके और बादलों को देख करके और समंदर को देख करके और हाथी को देख करके और गेंडों को देख करके ये इल्म तो नहीं हासिल हो सकता ना, है ना। ये इल्म तो नहीं हासिल हो सकता, ठीक है ना। इतना इल्म तो हासिल हो सकता है अकल की बुनियाद पर, इतना तो इल्म हासिल हो सकता है कि हाँ ये सारी चीजें जो हैं इनका कोई खालिक है, और दूसरा क्या कि इनका कोई एक ही खालिक है, एक से ज्यादा खालिक नहीं हो सकते, क्योंकि इतना जबरदस्त तरीके से आपस में मरबूत हैं और सारा का सारा निजाम दुनिया का इतना परफेक्टली यानी इन हार्मनी चल रहा है, तो इस पूरे निजाम के ना एक से ज्यादा खालिक नहीं हो सकते, एक ही खालिक हो सकता है। इतना तो पहुंच सकते हैं अकल की बुनियाद पर, लेकिन इससे ज्यादा डिटेल जो है ना वो अकल खुद से अखज नहीं कर सकती, ठीक है ना। ये अकल की लिमिटेशंस है। फिर अकल के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस भी होते हैं इंसान के मिजाज, ठीक है, और कमजोरियां और उसके गुस्सा और उसकी शहवत और उसका तकब्बुर, ये सारी चीजें उसके अकल के ऊपर असरअंदाज होती हैं, ठीक है ना। तो पहला रीजन कि हादी के बगैर हिदायत तक नहीं पहुंचा जा सकता, वो ये है कि अकल महदूद है, बड़ी लिमिटेशंस है उसकी, बड़ी कमजोरियां हैं उसके अंदर हमारी, ठीक है ना। हम हाथी को जो है वो अकल की बुनियाद पर करतब के अंदर इस्तेमाल तो कर सकते हैं, अकल की बुनियाद पर हम शेर को जो है ना वो सिधा तो सकते हैं, अकल की बुनियाद पर हम किलर वेल से जो है वो यानी क्या कहते हैं वो जो वाटर क्या कहते हैं उनको, वहां पे आप उनको नचा सकते हैं किलर वेल को, इतनी बड़ी चीज होती है और इतनी खतरनाक चीज होती है वो, और इंसान जो है वो किलर वेल से जो है तमाशे करवा रहा होता है, कैसे, अकल की बुनियाद पर ना, ठीक है ना। लेकिन अकल की बुनियाद पर हम ये हकीकतें नहीं जान सकते, तो हादी के बगैर हो ही नहीं सकता। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी रीजन ये है कि जैसे कि आप में से माशाल्लाह काफी ने जवाब भी दिया कि अगर हादी ना हो तो हम हिदायत के रास्ते पर कायम भी नहीं रह सकते, अगर हमें पता भी चल जाए कि हिदायत का रास्ता क्या है, ठीक है, और हम अपनी नफसानी जो जो कमी कोताहियां हैं, कमजोरियां हैं, नफसानी बीमारियां हैं, हम उनको किसी हद तक कंट्रोल कर भी ले ना, फिर भी रास्ते के ऊपर हमारा दुश्मन शैतान मौजूद रहेगा, ठीक है ना। ये शैतान दुश्मन जो है ये तो रास्ते के ऊपर मौजूद है ना, तो ये हमें रास्ते से डिट्रैक्ट करने के लिए, डिफोकस करने के लिए मुस्तकिल मेहनत करता रहता है, मुस्तकिल कोशिश करता रहता है, ठीक है ना। तो अब अगर कोई हमारा दूसरी तरफ से हाथ पकड़ने वाला ना हो जो कि हमें हिदायत के रास्ते के ऊपर बार बार लौटा यानी खींच के वापस लाता रहता हो, या जो है वो हमें याद दहानियां करवाता रहता हो, तो उसके बगैर जो है ना फिर शैतान हमें आसानी से जो डिफोकस कर लेता है। भाई एक सिंपल सी मैथमेटिकल इक्वेशन है, या एक मैथमेटिकल आप फैक्ट समझ लें इसको, कि अगर आप के दोनों हाथों के ऊपर किसी ने रस्सी बांधी हुई है, ठीक है ना, और एक हाथ की जो रस्सी है उसको कोई खींच रहा है, जबकि दूसरे हाथ के साथ जो रस्सी बंधी हुई है तो उसको कोई नहीं खींच रहा, तो भाई आप किस तरफ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, जहां अल्लाह चाहेगा उधर जाएंगे, है ना। हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं ना आजकल के, इंतहाई इंटेलेक्चुअल, उनका ये जवाब होगा बाय द वे, है ना, मुझे पहले से पता है क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी हूँ, राइट, और इंडियन भी कोई खास मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा एक ही है बस, जब तो सारा मसला पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो पाकिस्तानी को इंडियन लोग परेशान हो जाए करेंगे, ये तो पाकिस्तानी है और ये तो नेशनलिस्टिक किस्म के इंसान है, नहीं आप समझे ना समझे, माने ना माने, ये सब एक ही है, ठीक है, इसी वजह से तो सारा खौफ पड़ा हुआ है। बहरहाल तो हम चूंकि ज्यादा बड़े इंटेलेक्चुअल हैं तो हमारा जवाब ये होगा जिधर अल्लाह चाहेगा, है ना भाई, आपका होगा ये जवाब, जिधर अल्लाह चाहेगा हम उधर जाएंगे, ठीक है, बेशक जिधर अल्लाह चाहेगा हम उधर ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया हुआ है ना, तो वो सिस्टम भी अल्लाह की चाहत के मुताबिक ही बना हुआ है, ठीक है ना, कि अगर इधर से खींचोगे ना और उधर से नहीं खींचोगे ना, तो अल्लाह की चाहत यही होगी कि जिधर से तुम खींचे जा रहे हो तुम उधर ही जाओ, ये भी अल्लाह की चाहत से ही होगा, ये अल्लाह की चाहत के खिलाफ नहीं होगा, ठीक है ना। तो पाकिस्तानी का जवाब भी पाकिस्तानी से ही मिलेगा, ठीक है ना, जिसको कहता है ना लोहे को लोहे काटता है, तो इस इंटेलेक्चुअलिज्म का जवाब भी इंटेलेक्चुअलिज्म के जरिए से ही दिया जा सकता है कि आप जिधर खिंचेंगे ना, अल्लाह ताला चाहेगा कि आप उधर ही जाएं, ठीक है ना। क्योंकि आपका कसूर यह है कि अल्लाह ताला ने आपको ये इख्तियार दिया था कि भाई जब एक तरफ खींचने वाला सिलसिला रखा हुआ है तो दूसरी तरफ तुमने खींचने वाले सिलसिले से अपने आप को क्यों मुनकता करके रखा, क्यों अपने आप को काट करके रखा दूसरी तरफ से खींचने वाले सिलसिले से। ये तुम्हारा कसूर है कि तुमने अपने आप को डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो इसकी सजा तुम्हें मैं ये दूंगा कि जिस तरफ से तुम्हें खींचा जा रहा है तुम उसी तरफ खींचो, ठीक है ना। तो अब शैतान का सिलसिला अल्लाह ही ने रखा है ना इस दुनिया के अंदर, कि शैतान हमें बुराई की तरफ खींचता है, जहन्नुम की तरफ खींचता है, राइट। ये अल्लाह की मर्जी के बगैर तो शैतान ही दुनिया में पैदा हो गया खुद से अपनी मर्जी से, राइट। तो शैतान का सिलसिला अल्लाह ने रखा है, वो हमें जहन्नुम की तरफ मुस्तकिल खींच रहा है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरि नास मिनल जिन्नति वन नास, इंसानों में से भी है, खाली जिन नहीं है शैतान, इंसानों में से भी ये शैतान मौजूद है ना। मिनल जिन्नति वन नास, और वो जो है वो हमें खींचे चले जा रहे हैं। और इधर से हम कहते हैं कि नहीं, इधर अल्लाह है ना, अल्लाह काफी है ना, इधर जो है मेरी अकल काफी है ना, मेरी अकल जो है ना, मैं उसकी बुनियाद पर नेकी के रास्ते के ऊपर चलूंगा भी और नेकी के रास्ते के ऊपर कायम भी रहूंगा। मुझे किसी से पूछने की, मुझे किसी से जुड़ने की, मुझे किसी सोबत को इख्तियार करने की, मुझे किसी सिस्टम से जुड़ने की कोई जरूरत ही कोई नहीं है ना। तो ये हमारा बहुत बड़ा कसूर है, ये हमारा तकब्बुर है असल में। फस्तकबरू, वही जो फिरौन की कौम ने किया था, फस्तकबरू वकानु कौमन आलीन, राइट। हमारा भी यही हाल है, हम भी इस्तकबरू और हो गए हैं हम कानू, राइट, कुन्ना कौमन आलीन, हम हो गए हैं बड़े ऊपर चढ़ने वाले लोग, ठीक है ना, बड़ी चढ़ने वाली कौम हो गए हम लोग, ठीक है। तो इस वजह से दूसरी तरफ से आप खींचेंगे, तो इस वजह से ना बगैर हादी के मामला हो ही नहीं सकता, काम चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब जब कोई हादी किसी को मिल गया, ठीक है, तो अब ये अल्लाह ताला की जो है ना उसके लिए सबसे बड़ी नेमत है, ठीक है ना। और इस नेमत की नाकदरी जो है वो सबसे बड़ी नाकदरी भी है, ठीक है। अच्छा, तो अकल महदूद है, एक जुमला अगर आप लिख लेना चाहें अपने दिल के सफ़े के ऊपर या कागज के सफ़े के ऊपर, तो वो जुमला ये लिखें कि अकल महदूद है और शैतान मरदूद है, ठीक है ना। यानी अकल हमारी महदूद है और शैतान मरदूद मौजूद है, ठीक है ना। तो इस वजह से बगैर हादी के सिलसिला चल ही नहीं सकता। अच्छा, इसके ऊपर फिर सवाल होता है कि जी अगर झूठा हादी मिल जाए, कोई फेक हादी मिल जाए और वो हमें गुमराही के रास्ते के ऊपर चलाना शुरू कर दे, तो इसी वजह से तो हम हादियों से दूर रहते हैं भाई। आजकल तो सारे हादी जो है वो एक से एक जो है वो कि कोई अल्लाह वाला तो अब बाकी नहीं बचा, और दुनिया में तो सब खराबी फैल गई है और सारे बुरे हैं और ये है वो है, तो इस वजह से हम दूर ही रहते हैं भाई, ठीक है ना। तो इसका क्या जवाब है भाई? इसका जवाब ये है कि जो झूठा हादी वाला मामला होता है ना, ये झूठा हादी वाला मामला जो है ये इस सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम खुद झूठे होते हैं। ये याद रख लें इस बात को कि किसी इंसान को जब कोई झूठा हाथी टकर जाता है ना, उसकी रीजन ये होती है कि वो खुद झूठा होता है। वरना अगर कोई इंसान खुद सच्चा होता है ना, खुद मुखलिस होता है, तो उसका अल्लाह ताला उसको झूठे हाथी के हवाले नहीं करते, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने अपने कुरान के अंदर वादा फरमाया है, वादे फरमाए हैं बल्कि, ठीक है ना। वल्लज़ीना जाहदू फीना, जिसने हमारे रास्ते में हम तक पहुंचने के लिए कोशिश करी, मेहनत करी, लनहदियन्नहुम सुबुलना, जरूर बिल जरूर हम उसको अपने ही रास्तों की तरफ हिदायत देंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई हम तक पहुंचने के लिए मेहनत कर रहा हो और हम उसको जहन्नुम के रास्ते की तरफ हिदायत दे दें, कि जहन्नुम के रास्ते वाला कोई हादी जो है ना, झूठा हादी, वो उसका हाथ पकड़ के उसको जहन्नुम में ले जाए, हालांकि ये तो जन्नत में जाना चाहता था, हालांकि ये तो हमें राजी करना चाहता था, है ना। ये जुल्म होगा और अल्लाह ताला ने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो झूठे हाथों की हादियों के साथ फंस जाते हैं ना जा करके, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी इखलास की कमी होती है, बल्कि खराबी होती है, ठीक है ना, ये वजह होती है और कोई वजह नहीं होती। हाँ, ये एक और बात है, ये इसके अंदर मजीद तफसील ये है कि कभी ऐसा होता है कि एक मुखलिस इंसान जो कि वाकई अल्लाह ताला को पाना चाहता है, अल्लाह ताला को राजी करना चाहता है, वो टेम्पोरारिली ٹیمپوریرلی کسی غلط جگہ پر پھنس جاتا ہے، لیکن وہ تھوڑے دیر کے لیے ہوتا ہے، کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو صحیح جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں. تو پھر وہ ٹیمپوریرلی کسی غلط جگہ پہ کیوں پھنساتے ہیں بھائی؟ ڈائریکٹلی ہی صحیح جگہ پہ لے جائیں، اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے ڈائریکٹلی ہی صحیح ہاتھی کے ساتھ جوڑ دیں. کیوں؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ایکسپیرینس کو، کسی غلط جگہ پہ جا کر کے جو اس کو ایکسپیرینس ملتا ہے نا، اس کے ذریعے سے اس کو سکھانا چاہتے ہیں، اس کو کچھ ایکسپوجر دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں لرننگ کرو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ کسی جگہ پہ جانا چاہتے ہو نا، تو اس کے لیے ایک اسٹریٹ لائن بنتی ہے نا کہ بھائی آپ یہاں سے جیسے مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں، تو مکہ مکرمہ اور آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں سے اگر آپ بالکل ایک اسٹریٹ لائن بنائیں تو آپ پہنچ جائیں گے مکہ مکرمہ. ٹھیک ہے نا؟ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جی آپ ڈائریکٹلی نہیں جا سکتے، بلکہ آپ کو جو ہے نا وہ کسی جگہ کے راستے کسی تھرو ہو کے جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ پاکستان کی ڈائریکٹ فلائٹ بھی لے سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ کبھی ٹرانزٹ کے تھرو بھی فلائٹ لے سکتے ہیں. ہے نا؟ کہ جی بحرین گئے، پھر بحرین سے جا کے آپ کراچی چلے گئے، یا آپ جو ہے وہ دبئی گئے، دبئی سے جا کے کراچی چلے گئے. تو یہ جو ٹرانزٹ فلائٹ ہوتی ہے نا، ٹرانزٹ اسٹاپ جو ہوتا ہے، یہ ٹرانزٹ اسٹاپ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم جا رہے وہ ایئر لائن کی فلائٹ میں تو یوزلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو فلائٹ ڈائریکٹ اویلیبل نہیں ہوتی، یا یہ کہ سستی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے ٹرانزٹ فلائٹ ایئر ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ جو ٹرانزٹ کرواتے ہیں نا، کبھی بیچ میں غلط جگہ پہ ٹرانزٹ کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد فائنلی صحیح جگہ پہ پہنچاتے ہیں، تو وہ ایک لرننگ کرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، سیدھے راستے سے نہیں لے کے جاتے، بلکہ تھوڑا گھما پھرا کر کے پھر فائنل ڈیسٹینیشن پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن جو مخلص انسان ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کا خاتمہ گمراہی پر ہو جائے. اس کا خاتمہ جو ہے وہ خیر پر ہی ہوگا اور فلاح کے اوپر ہی ہوگا. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تو کچھ اہم باتیں جو کہ بار بار ریپیٹ کرنے کی ہوتی ہیں، اس وجہ سے آج بھی دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کر دیا. یہاں پر کافی سارے میسیجز آئے ہوئے تھے جو کہ میں نے سارے پڑھے نہیں ہیں، تو ان کو پڑھ لیتے ہیں کہ ہی گائیڈز ویئر یو اچھا وین یو شر سے میں اینڈ ہی گائیڈز آن واٹ از مینڈیٹری واٹس اپ. کیا دوبارہ سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جی دوبارہ سوال نہیں اب تو ہو گیا، بہت ہو گیا. عقل عملی نمونہ مانگتی ہے، ہادی عملی نمونہ ہوتا ہے. بہت کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو پھر ماشاء اللہ بڑی بڑی باتیں کرنا شروع ہو جاتا. صحیح غلط کا پتہ چلانے کے لیے، صحیح اور غلط کی پہچان کرنے کے لیے. ہادی خود ہدایت کے راستے پہ ہے اور اس سے پتہ ہے کہ اصل راستہ کہاں ہے. اگر ہادی کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ پاک انبیاء کرام کو نہ بھیجتے. ہے نا؟ بہت ہی ماشاء اللہ سادہ ترین جواب تو یہ بھی ہے عقلی طور پر، کہ بھی اگر ہادی کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ نے خامخائی جو ہے وہ انبیاء بھیجے ہوئے اس دنیا کے اندر، ایسے ہی بس مطلب خانہ پوری کرنے کے لیے بھیجے ہوئے. نہیں، اس لیے بھیجے ہوئے ہیں کہ انسان بغیر ہادی کے راستہ پا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہی نہیں خامخواہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انبیاء بھیج دیا نا، تو یہ جواب بھی کافی تھا ویسے تو، لیکن ہم نے تھوڑا سا آپ کو عقلی طور پہ جس کو ذرا، جس طرح استاد کے بغیر علم نہیں حاصل ہو سکتا، مزاج کی خرابی کیسے دور کی جائے گی؟ مزاج کی خرابی دور کرنے کے لیے علاج معالجہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مزاج کی خرابی جو ہے وہ بیماری ہی ہوتی ہے، اور بیماری جو ہے وہ بغیر علاج کے دور نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ اب علاج کیسے کرواتے ہیں بھائی؟ تو جس طریقے سے آپ جب کوئی جسمانی بیماری ہو جاتی ہے اس کا علاج کرواتے ہیں، اسی طریقے سے روحانی بیماری کا بھی علاج کرواتے ہیں. یعنی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے ان کو احوال بتا کر کے، ان سے نسخہ لے کر کے، اس نسخے کے اوپر عمل کر کے، اور پھر ڈاکٹر کو اپنے احوال سے باخبر رکھ کر کے اسی طریقے سے علاج کروایا جاتا ہے. تو جسمانی بیماریوں کا بھی ایسے ہی علاج ہوتا ہے اور روحانی بیماریوں کا بھی ایسے ہی علاج ہوتا ہے. کیوں قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتے ہیں، چلیں آگے چلنے کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون بی آیاتنا و سلطان مبین، کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنے احکام اور کھلی دلیلیں، یعنی معجزہ صریحہ کے دلیل نبوت ہے، देकर फिरौन और उसके दरबारियों के पास भी पैगंबर बनाकर भेजा। यानी ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा था कि मूसा अलैहि सलाम का जमाना आ गया और बनी इसराइल की तरफ मबूस होना भी मालूम है। सो उन लोगों ने उनकी तस्दीक व अताअत से तकब्बुर किया। ठीक है, यानी जब हादी का इनकार किया जाता है ना, तो ये इनकार तकब्बुर की बुनियाद पर होता है। इस बुनियाद पर नहीं होता कि यानी इस समथिंग वेरी नाइस टू नो बट आई वुड रादर डू समथिंग एल्स। एक होता है ना, एक बड़ा आजजाना तरीका भी होता है अपने आप को एक्सक्यूज कर लेने का, है ना, कि भाई कोई बात कोई आकर के आपको जो है वो सही रास्ता बता रहा है, आपको आपकी गलती के ऊपर मुतनब्बे कर रहा है और आपको आपके साथ खैरख्वाही कर रहा है। ठीक है ना, तो अब एक बड़ा मॉडर्न सोसाइटी के अंदर ना बड़ा एक शरीफाना अंदाज होता है। ठीक है ना, इस यानी क्या क्या मतलब मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, बड़ा थैंक यू वेरी मच, सो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, बट आई वुड रादर नॉट डू, आई वुड रादर नॉट टेक योर एडवाइस। मैं जो हूँ वो कुछ और कर रहा हूँ ना, और मैं जो हूँ वो यानी अभी मेरे पास वक्त नहीं है, अभी मैं जरा जरा ज्यादा बिजी हूँ, और अभी अभी नहीं बाद में। बहुत सारे शरीफाना अंदाज होते हैं इनकार करने के। ठीक है ना, लेकिन ये जो शरीफाना अंदाज होते हैं ना इनकार करने के, पहलू तही करने के, ठीक है ना, ये ऊपरी तौर पर तो बड़े शरीफाना लगते हैं, बड़े जो है वो कल्चर्ड किस्म के तरीके लगते हैं। ठीक है ना, लेकिन अंदर से इसकी रीजन क्या बनती है? अंदर से इसकी रीजन तकब्बुर ही बनती है। ठीक है, यानी ये तकब्बुर ही की अलामत होते हैं। ऊपर से बेशक कितना ही आजजाना खिताब आप कर रहे हो हादी से, कितना ही आजजाना तौर पर आप उसे एक्सक्यूज कर रहे हो, असल में ये तकब्बुर ही है। ठीक है ना, और वो क्या तकब्बुर है? तकब्बुर ये है कि आई डोंट नीड यू टू टेल मी, आई ऑलरेडी नो। ठीक है ना, एंड इन फैक्ट आई ऑलरेडी नो का मतलब खाली इतना नहीं होता कि जी जो आप मुझे बता रहे हैं ये चीज मुझे पता है, बल्कि इसका एक छुपा मतलब उसके अंदर ये भी होता है कि आई नो बेटर देन यू, आई नो बेटर देन यू वॉट इज गुड फॉर मी एंड वॉट इज नॉट गुड फॉर मी। ठीक है ना, तकब्बुर जो है ना ये बेटर के मानी में आता है कि कंपेयर टू यू आई नो बेटर, कंपेयर टू यू आई एम मोर सक्सेसफुल, कंपेयर टू यू आई एम बेटर ऑफ। ये है तकब्बुर। तकब्बुर ये नहीं है कि बस मैं बहुत अच्छा हूं, बस ठीक है, सब सेट है, बाकी आप भी बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं भी बहुत अच्छा हूं, आप भी बहुत अच्छे हैं मैं भी बहुत अच्छा हूं, ये तकब्बुर नहीं होता, ये तकब्बुर नहीं होता, ये उजब कहलाता है, खुद पसंदी कहलाती है, लेकिन तकब्बुर ये नहीं कहलाता। तकब्बुर उस वक्त बनता है जब मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं, कंपेयर टू समवन एल्स। ठीक है ना, ये मुकाबले में तकाबला या तकाबलू, है ना, ये तकब्बला तकब्बलू, तकब्बरा ये तकब्बरू, राइट, ये सेम वर्ड फॉर्म बनती है अरबी जुबान के अंदर, और इसके अंदर मुकाबला। ठीक है, तो जब हम किसी हादी को ब्रश ऑफ कर रहे होते हैं ना, तो इतना स्वीट तरीके से ब्रश ऑफ जो हम करते हैं ना, इस स्वीट तरीके का असल मतलब ये होता है कि आप जो समझ रहे हैं ना कि मेरी हिदायत इस रास्ते में है, मेरी हिदायत फलाना काम करने में है, मेरी कामयाबी फलाना काम करने में है और फलाना काम छोड़ने में है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे ज्यादा अच्छा समझता हूं कि मेरी हिदायत कौन से वाले काम करने में, मेरी फलाह जो है वो कौन सा काम छोड़ने में, मैं आपसे ज्यादा समझता हूं इस बात को, मैं आपसे ज्यादा समझता हूं, यही तकब्बुर है। ठीक है ना, यही तकब्बुर है। तो इस वजह से ये उन लोगों ने भी वही काम किया था और आज हम भी यही काम करते हैं, मैं आपसे ज्यादा समझता हूं। ठीक है, तो अगर अगर हम तकब्बुर को बुरा समझते हैं, अगर हम वाकई तकब्बुर को बुरा समझते हैं, जो हमें तकब्बुर करता हुआ नजर आता है हम उससे नफरत करते हैं, हम उसके बारे में जो है वो बड़ा हमारे खास दिल के अंदर बहुत बुराई वाली कैफियत आती है, वो तो बड़ा मुतकब्बिर है, तो अब अगर इस डिस्कशन से हमें कुछ ये समझ में आ गया कि भाई ये तो हम भी कर रहे हैं, ये तो मैं भी कर रहा हूं, मैं भी कर रही हूं, तो फिर शायद हमें कुछ ज्यादा बेहतर हो जाए, अपने एटीट्यूड को चेंज करना आसान हो जाए हमारे लिए शायद। ठीक है, किसी ने लिखा है कि कभी गलत जगहों से चीजें बहुत अच्छी अच्छी सीखने को मिलती तो बाद में आदमी सोचता सोचता ये गलत लोग इतनी अच्छी चीजें कैसे बता रहे हैं। जो काम की बातें होती हैं इस पर अकल हैरान होती है, और वो बातें हमें बाद में काम आ रही होती हैं, ये बात समझ नहीं आती। यानी गलत जगह से कुछ अच्छी अच्छी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं, तो ये जिससे कि हमें फायदा भी हो रहा होता है, तो यानी ये बात समझ में नहीं आती सवाल पूछ रहे हैं। तो वाली खातून है, वो कह रही है, और कुछ लोग मुखलिस लोगों से जुड़कर भी जुदा हो जाते हैं, इसकी क्या रीजन होती है। भाई मुखलिस लोगों से जुड़कर जुदा होते हैं ना, खुद तो मुखलिस नहीं थे ना, ठीक है ना। जैसे नबी अलैहिस्सलाम से कल जो रात को बयान हुआ था, ठीक है ना, कि कुछ लोग ऐसे हैं या अब्दुल्लाह अला हरफिन, है ना, कि वो बॉर्डर लाइन के ऊपर होते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं बॉर्डर लाइन के ऊपर। क्या मतलब था इसका, कि वो नबी अलैहिस्सलाम से जुड़े लेकिन उनकी नीयत सही नहीं थी, तो इस वजह से कुछ अरसे के बाद वो कट गए, दूर हो गए। तो भाई जिनसे जुड़े वो मुखलिस थे, लेकिन जो जुड़े थे वो तो मुखलिस नहीं थे ना। तो अपने अमल की वजह से इंसान को फायदा नुकसान होता है ना, ठीक है ना। ये कोई थोड़ी कि जिससे जुड़े हैं वो मुखलिस है, तो इस वजह से गैर मुखलिस को भी। भाई मुनाफिकीन भी तो नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में आते थे ना, ठीक है, और मस्जिद नबवी के अंदर जहाँ पे हम जो है वो लड़ लड़ करके एक दूसरे को धक्के दे दे करके, वो कोरोना की वजह से तो खैर ये खत्म हो गया था, लेकिन वो रियाजुल जन्ना के अंदर कैसे अभी दोबारा से खोल दिया है, तो माशाल्लाह एक तमाशे हो रहे थे वहां पे। आज गया तो हैरान, पता नहीं क्या हो रहा है इधर, ठीक है ना। बाकायदा चीख चिल्ला भी शुरू हो गया था मर्दों के अंदर, औरतों में तो खैर होता ही रहता था, मर्दों के अंदर भी, है ना। तो जिस जगह को अल्लाह ताला ने रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना बनाया है, वहां पर ये मुनाफिकीन आके नमाज पढ़ा करते थे, राइट। जिसके लिए आज हम लड़ पड़ रहे होते हैं, वहां पे आके रोजाना नमाज पढ़ते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठते थे, लेकिन उनको फायदा हुआ उनको नहीं, क्योंकि इनकी अपनी नीयत खराब थी, ठीक है। अच्छा, जो कभी गलत जगह से कोई अच्छी चीज और फायदेमंद चीज सीखने को मिल जाती है तो उसके ऊपर आपको हैरानी होती है, वो कैसे हो जाता है। तो उसकी वजह यही होती है कि भाई एक तो ये उसकी वजह होती है कि इल्म का जो मंबा है, जो सोर्स है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात है, ठीक है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, वो सही इल्म को, अच्छे इल्म को किसी बुरे वास्ते से भी पहुंचा सकते हैं, वो इसके ऊपर कुदरत रखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप काफिरों की किताबें पढ़ते हैं, ठीक है ना, और उन किताबों के अंदर से कभी आपको बहुत फायदेमंद चीजें मिल जाती हैं, दुनियावी तो क्या, दीनी एतबार से फायदेमंद चीजें मिल जाती हैं, ठीक है ना। इसकी एक मिसाल जो आजिस मेरे जहन में हमेशा से यही एक मिसाल, यानी हमेशा से तो नहीं, बहुत अरसे से यही मिसाल रही है, वो ये कि वो जो एक शख्स था, बल्कि है अभी तक वो मलून जिंदा, सलमान रुश्दी, ठीक है। सलमान रुश्दी, उसने किताब लिखी थी सैटेनिक वर्सेस, है ना, कितनी घटिया गलीज और बुरी किताब है वो, ठीक है ना। लेकिन कितने लोग ऐसे थे जो कि सैटेनिक वर्सेस पढ़ने के बाद मुसलमान हो गए, है ना भाई। तो सैटेनिक वर्सेस पढ़ी, कितनी गंदी गंदी बातें उसके अंदर लिखी हुई थी, लेकिन वो सोचने पर मजबूर हो गए कि क्यों इतना हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है ये शख्स, और इतने सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं इस दीन के खिलाफ। ये बहुत पुरानी बात है, शायद अर्ली 90s की बात है ये, जब ये सारा दूसरे मसले भी शुरू नहीं हुए थे कोई ना, ठीक है। तो उस वक्त इतना ज्यादा इस्लामोफोबिया मौजूद नहीं था, तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि यार क्यों पूरी दुनिया जो है ना वो इतनी गंदी और इस किस्म की किताब के कोई हिमायत कर रही है, तो चलो हम इस दीन को पढ़ना शुरू करते हैं कि इसके अंदर क्या है, इनका साइड ऑफ द स्टोरी क्या है। जब उन्होंने उनकी साइड ऑफ द स्टोरी पढ़ी, यानी दीन इस्लाम की, तो मुसलमान हो गए। अब रीजन क्या बनी उनके मुसलमान होने को, बजाय देखा जाए तो सैटेनिक वर्सेस बनी ना रीजन मुसलमान होने की, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है ना वो किसी भी जरिए से हिदायत जो है वो पहुंचाने पर कुदरत रखते हैं, ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला की आदत क्या है, अल्लाह ताला की आदत यह है کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور مخلص بندوں کو ہدایت کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ویسٹ میجورٹی میں اللہ تعالیٰ کی یہ اس کو عادت کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, میجورٹی آف دی کیسز میں ایسے ہوتا ہے, لیکن مائنورٹی آف دی کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ برے سورسز کو بھی اللہ تعالیٰ کسی صحیح علم کے پہنچانے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس بات, ایک تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے, اور دوسری بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے, بہت ضروری ہے خصوصاً آج کے دور کے اندر, ٹھیک ہے نا, بہت ضروری ہے یہ بات کہ کسی کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار کیا ہے. کسی کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار کیا ہے, ہاؤ ڈو یو ڈسائڈ سم ون از رائٹ اور سم ون از رانگ, ٹھیک ہے نا, ہاؤ ڈو یو ڈسائڈ, واٹ از دا کرائیٹیریا, واٹ از دا اسٹینڈرڈ, واٹ از دا لٹمس ٹیسٹ, کیا ہے اس کا معیار, آپ بتائیں گے تو ہم آگے چلیں گے, ٹھیک ہے نا. جیسے انہوں نے سوال پوچھا نا, بڑی اچھی اچھی باتیں سننے کو ملی جس سے ہمیں بڑا فائدہ بھی ہوا, ہم نے سنا ہمیں بڑا فائدہ ہوا اور ہم نے جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیا, ہم نے فلانا فائدہ ہو گیا, دینی فائدہ ہو گیا, دنیاوی فائدہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ صحیح ہے کیونکہ ہمیں فائدہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. کیا ہے طریق, کیا ہے, تو جواب آ رہے ہیں, علماء حق کے ساتھ ہیں, اچھا جی, سنت طریقہ, ٹھیک ہے نا, اتباع سنت. اچھا یہ سنت کا لفظ جو ہے نا, اب مسئلہ اصل میں زیادہ خراب ہو چکا ہے, اس وجہ سے سنت کا لفظ جو ہے نا وہ اب کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, تو بہتر ہے کہ اس سے زیادہ ایک سمپلر ورڈ استعمال کریں جو کہ اس وقت ہمیں ہماری زیادہ ضرورت ہے, بن گئی ہے, ٹھیک ہے نا. ویسے تو سنت ہماری ضرورت ہے لیکن حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا سنت کیا چیز ہوتی ہے, بیکاز سنت جب لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو داڑھی سے زیادہ آگے بات نہیں جاتی ہے نا, داڑھی اور اونچے پانچے پانچوں والی شلوار اور کچھ مسنون دعائیں, بس سنت پہ ہم ادھر ہی جا کے پھنس جاتے ہیں, اس کے آگے نہیں جا سکتا جا پا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یا یہ اچھے اخلاق, اچھے اخلاق جو ہے وہ سنت ہے, ٹھیک ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بہترین اخلاق والے تھے اور ہم اس سے آگے نہیں پہنچ نہیں پاتے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ایسی بات کریں جو کہ ہمیں اس دور اس زمانے میں فائدہ پہنچا سکے اور سمجھ میں بھی آ سکے, زندگی شریعت پر سنت پر ہے کہ نہیں ہے, شریعت سنت کے پابند ہے, ٹھیک ہے. تو جی یہ آپ کے دینی علم پہ ہے, جتنا علم ہوگا اتنا اچھے برے کی تمیز ہوگی, اور نہیں اتنی مشکل بات نہیں, ہاؤ دے ڈیل وتھ پیپل, ہو دیئر ٹیچرز آر, ان کی صحبت, ٹھیک ہے, یہ سب باتیں بھی ہیں, لیکن ایک سادہ سا جو کرائیٹیریا ہے نا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم بہت ہی جنرلائز کر کے اس وقت بات کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ان کے عقائد کیا ہیں اور وہ شریعت کی پابند ہیں کہ نہیں, شریعت فرائض, ٹھیک ہے نا, فرائض کی پابندی ہے کہ نہیں, شریعت کی پابندی ہے جس کو شریعت کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو عقائد اور شریعت کی پابندی, یہ دو چیزیں, ٹھیک ہے نا, یہ ہے کرائیٹیریا, یہ ہے سٹینڈرڈ. اب یہ شریعت کی پابندی ہم جیسا کوئی ایک لے پرسن کیسے ڈٹرمن کرے کہ فلانا بندہ اس کے عقائد ٹھیک ہیں یا وہ جو ہے وہ شریعت کی پابندی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, یہ ہم کیسے معلوم کریں, یہ ہم کیسے, ہمارے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر علماء حق, ٹھیک ہے, کہ جس کے اوپر علماء حق, موجودہ علماء حق کا جس پر اعتماد ہو, تو ان کے اعتماد کی بنیاد پر ہمیں پتا چلے گا کہ اچھا اس کے عقائد ٹھیک ہیں اور اس کے اندر شریعت و سنت کی پابندی ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پھر تھوڑی سی اور تفصیل بھی آ جاتی ہے. تو بھائی یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کہ کسی کے بات سے مجھے فائدہ پہنچتا ہے تو اس وجہ سے وہ تو ہی ہیز ٹو بی رائٹ, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ غلط ہو کیونکہ مجھے تو فائدہ ہو گیا اس کے اس سے. نہیں, یہ کرائیٹیریا ہے ہی نہیں, یہ اسٹینڈرڈ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسٹینڈرڈ تو بھائی دین ہے, دین کے اندر عقائد اور فرائض, شریعت, ٹھیک ہے نا. تو دونوں باتیں یاد رکھیں, ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ کسی کے ذریعے سے بھی فائدہ مند علم یا فائدہ مند چیز پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ غلط کے ذریعے سے بھی ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف صحیح کے ذریعے سے فائدہ پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں, نہیں, غلط کے ذریعے سے بھی فائدہ پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں نا, رائٹ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ فائدہ پہنچ جانا جو ہے یہ صحیح ہونے کی دلیل ہے ہی نہیں, ठीक है, पंज वक्ता नमाज वो पंज वक्ता नमाज ही तो आजकल माशाल्लाह सारी है पाकिस्तान में, तो तकरीबन सारे तो नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये कि बहुत सारे जो हैं जिनके इस वक्त अकायद भी खराब हुए हुए हैं और फराइज का मसला बहुत खराब हुआ हुआ है, पंज वक्ता नमाजी आपको नजर आते हैं, बजाय तो ऐसे ही लगता है ये पंज वक्ता नमाजी है। ऐसा नहीं, ये इससे नहीं पता चलता ना। ठीक है, कैन वी से शरीयतन तरीकत, नहीं तरीकत का लफ्ज जो है ना वो इधर इस्तेमाल नहीं करने तो बेहतर है। मुखलस कैसे बन सकते हैं, क्या ये फितरी चीज नहीं है? मुखलस बनना फितरी चीज है, फितरी चीज तो वो होती है जो कि अच्छा भाई देखें, फितरी चीज तो ये है मुखलस, ठीक है ना, क्योंकि जब आप पैदा होते हैं तो आप मुखलिस ही हो पैदा होते हैं, है ना, पैदा होते वक्त जो है ना वो आपके अंदर यानी हमारे अंदर पैदा होते हुए जो है वो बदनीयत ही नहीं होती ना, और जब तक हम छोटे बच्चे रहते हैं तो हम जो है मुखलिस ही होते हैं, बदनीयत नहीं होते, ठीक है ना, तो फितरी चीज तो ये है मुखलिस होना, लेकिन जब बड़े होते हैं तो फिर क्या होता है, फिर उसके बाद हमारा जो मुखलिसपन है वो वेयर ऑफ होना शुरू हो जाता है ना, तो इस वजह से आपका सवाल अगर फितरी के हिसाब से अगर आप पूछना चाहती हैं तो फिर मुखलिस रहते कैसे हैं ये सवाल होना चाहिए, है ना, फितरी तौर पर मुखलिस होते हैं तो अब इसके ऊपर हम कायम कैसे रहें, ठीक है ना, तो इसका जवाब ये है कि भाई हम चूंकि हम तो बड़े हो चुके और हमारा तो बेड़ा गर्क हो चुका, हम अपने इखलास को खो चुके, ठीक है ना, तो अब हमारा हमारे लिए सवाल ये है कि हम अपने इखलास को वापस कैसे गेन करें, ठीक है ना, वापस गेन कैसे करें, ठीक है ना, और हमारे बच्चों के लिए ये सवाल होना चाहिए कि हम उनकी इस फितरत को महफूज कैसे करें कि वो हमारी तरह जो है वो अपने इखलास को लूज ना कर बैठें, अपने इस फितरी प्योरपन को गंवा ना बैठें जैसे हमने गंवा दिया, ठीक है ना, तो ये दो सवाल होते हैं, हम अपने उसको रीगेन कैसे करें और हम उनके इखलास को की हिफाजत कैसे करें, ठीक है, तो इसका जवाब जो है वो पीछे थोड़ी देर पहले इस आज ने दिया था कि भाई ये जो इखलास की खराबी होती है ये बीमारी होती है और बीमारी का इलाज जो है वो डॉक्टर के पास जाके करना होता है, तो जो अल्लाह ताला ने रूहानी तबीब रखे हैं, क्या मतलब रूहानी तबीब, झाड़ फूक करने वाले, वजीफे देने वाले, नहीं वो रूहानी तबीब नहीं होते, झाड़ फूक करने वाले जो होते हैं ना वो आमिल कहलाते हैं, वो रूहानी तबीब नहीं होते, रूहानी तबीब वो होता है जो कि हमारी रूहानी बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करता हो, यानी गुस्सा, तकब्बुर, शहवत, हिर्स, हसद, राइट, दुनिया की मोहब्बत, ये रूहानी बीमारियां होती हैं, इन रूहानी बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करे वो रूहानी तबीब होते हैं, तो भाई रूहानी अतिब्बा दुनिया के अंदर मौजूद होते हैं, उनको ढूंढना चाहिए और उनके साथ जो है वो अपना इलाज मुआवजे का ताल्लुक बना लेना चाहिए, इससे फिर हम अपने उस यानी भूले हुए या जो हमारा गंवाया हुआ इखलास होता है ना उसको हम दोबारा से हासिल करने के काबिल हो जाते हैं, और जाहिर है इससे पहले करने का काम यह है कि अल्लाह ताला से मांगना, दुआएं मांगना, ठीक है, तो पहले तो दुआएं मांगना अभी से शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद फिर रूहानी अतबा की तलाश भी शुरू कर लेते हैं, दुआ और दवा जब मिल जाती है तो फिर इफेक्ट हो ही जाता है। अच्छा, बच्चों की हिफाजत करने के लिए, बच्चों को बुरे माहौल से बचाना, बुरे इन्फ्लुएंसेस से बचाना, ठीक है ना, इसकी मेहनत करें अल्लाह ताला से मदद मांगने के साथ साथ, ठीक है, ताकि बच्चों का इखलास जो है वो हमारी तरीके से खराब ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पे किसी ने लिखा है कि किस चेक हिज फॉलोअर्स एंड कंपेनियंस ऑल्सो, हाँ बेशक बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और हमें भी बड़ा फायदा हो जाता है उसकी कुछ बातों से, लेकिन उसके फॉलोअर्स और कंपेनियंस को भी देखें, एक हद तक जो है वो दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, ठीक है, तो इसी तरीके से जो फॉलोअर्स होते हैं ना उनको भी देख करके एक एक रफ अंदाजा हो जाता है कि बंदा कैसा है, ठीक है, अगरचे के ये भी कोई कोई बिल्कुल डिटर्मिनिस्टिक किस्म का तरीका नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नेक लोग भी होते हैं, उनके भी बहुत सारे फॉलोअर्स ऐसे होते हैं जो कि अभी नेकी के रास्ते में इतना आगे नहीं बढ़े हुए, अभी भी उनके अंदर कुछ अखलाकी बीमारियां रह जाती हैं। ठीक है ना भाई, डॉक्टर का हर पेशेंट जो होता है वो बिल्कुल अब बीमारी से पाक साफ तो नहीं हो जाता ना। ठीक है ना, तो पेशेंट्स को देख करके, जो अच्छे पेशेंट जिनको फायदा हो चुका होता है, आपको डॉक्टर के बारे में एक अच्छा अंदाजा हो जाता है कि हाँ इस डॉक्टर से इतने सारे लोगों को फायदा भी हुआ है। लेकिन अगर आप जो है वो खाली उन पेशेंट्स को देखें कि जो कि अभी तक बीमारियों में मुबतला है, और उसकी बुनियाद पर आप डॉक्टर का फैसला कर लें कि भाई डॉक्टर भी बुरा है, जब तो ये अभी तक बीमारियों में मुबतला है, तो ये तो सही नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये जो है ना पे कंपेनियन और फॉलोअर्स को देख करके, तो इसके बारे में यानी थोड़ा सा और तफसील में जाना पड़ेगा। वैसे नहीं, बिकॉज ये दिस कैन वर्क बोथ वेज ना, नेकों के बारे में बदगुमान करने के लिए भी तो ये चीज इस्तेमाल हो सकती है, और उसी तरफ भी इस्तेमाल। किसी भी किस्म के तकब्बुर का दिल में आना या कभी ख्याल आए तो अपनी नीयत को दुरुस्त करना कैसा है? एक दुआ भी है, रब्बे आऊज बिका मिन हमजात शयातीनी वाऊज बिका रब्बे आइनी यहजुरूनी यहजुरून रब्बे आइनी। जी, जब तकब्बुर का दिल में ख्याल आए तो फौरन इस्तिग़फ़ार पढ़े, अल्लाह ताला से माफी मांगे। ठीक है, और ये भी सोचे कि मेरे अंदर जो इतनी सारी बुराइयां हैं तो वो भी तो है ना। ठीक है, तो ये जो एक अच्छाई के ऊपर मैं मुतकब्बिर बना जा रहा हूँ तो ये तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, तो अपने ऐबों की तरफ नजर करने की कोशिश करें। ठीक है ना, ये जो दीद कसूर होता है ना, यानी ऐबों की दीद, अपनी गलतियों के ऊपर नजर रखना, इससे इंसान के तकब्बुर का इलाज होता है। ठीक है, और जो दुआ करने की बात आप कर रहे हैं, तो भाई दुआ तो हर चीज के लिए करते हैं। ठीक है, तो भाई जब कल को बच्चों की क्लास में भी इस तरह की बात हुई हुई है कि कल को जब हम बीमार पड़े ना और अम्मी अब्बू कहें कि बेटा पैनाडोल खाओ और बेटा ये वाली दवा खाओ, तो आप कहेगा अम्मी मैंने अब्बू से दवा अम्मी मैंने अल्लाह से दुआ कर ली है, मैंने कोई दवा नहीं खानी है क्योंकि अल्लाह से मैंने दुआ कर ली है। ठीक है ना, तो फिर आप देखिए आगे से अम्मी और अब्बू क्या जवाब देते हैं, है ना भाई, अल्लाह से दुआ कर ली है, लेकिन बेटा दवा भी जरूरी है, दवा जो है ना ये सुन्नत भी है या दीन भी है और ये जरूरी भी है, सब कुछ है, तो खाली दुआ से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो भाई जिस तरह से एक मामूली सी जिस्मानी बीमारी जो है ना वो खाली दुआ से दूर नहीं होती, बल्कि दवा करना हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया है ना, तो उसी तरीके से रूहानी बीमारियां जो है ना ये भी सिर्फ दवा से दूर नहीं होती, सिर्फ दुआ से दूर नहीं होती। ठीक है ना, दुआ तो करनी ही है, उसके बाद फिर दवा भी करनी है, यानी असबाब इख्तियार करना है जिनसे कि हमारा तकब्बुर जो है ना वो ठिकाने लग सके। ठीक है, ऐसे ही तकब्बुर खाली दुआओं से दूर नहीं होता, बल्कि दवा भी करनी पड़ती है। कैन वी, अच्छा ठीक है, आगे चलेंगे। तो ये बनी इसराइल जो थे, इन्होंने तकब्बुर, सॉरी, ये जो फिरौन के जो सरदार थे उन्होंने तकब्बुर किया, और वो लोग थे ही मुतकब्बिर, यानी हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, यानी पहले ही से उनका दिमाग सड़ा हुआ था। ठीक है, यानी जो तकब्बुर करने वाला होता है, हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि उसका दिमाग जो होता है ना वो सड़ा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि वाकई तकब्बुर एक ऐसा शख्स के जिसको के एक ऐसा वायरस जो कि आंख से नजर आना तो क्या, माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आता है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स बाउंस करते हैं तो वो बाउंस ऑफ होते हैं तो पता चलता है अच्छा जी ये वायरस है। तो ये जो वायरस है जिसकी कोई फिजिकल वैल्यू कोई नहीं, और जिसका जो है वो जिंदा भी, हमारे हजरत भी बड़े रिसर्च करने वाले हैं, उन्होंने भी बयान में फरमाया था कि वायरस जो होता है ना ये तो, बल्कि हमने बचपन में हमने भी याद पड़ता है बायोलॉजी में पढ़ा था कि इसके बारे में तो यही नहीं है कि ये लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है, तो अक्सर साइंटिस्ट उसको नॉन लिविंग थिंग कहते हैं, और ये तो अपना वजूद ही नहीं रख सकता जब तक किसी ह्यूमन सेल के ऊपर ना चढ़ जाए, है ना। तो वो वायरस पहले तो एक बंदे को लेटाता था, ठीक है ना, अब तो उसने पूरी दुनिया को लेटा दिया, कोरोना वायरस, ठीक है ना, पूरी दुनिया को लेटा दिया उसने। तो जिनकी ये हकीकत हो इनफरादी तौर पर भी कि एक वायरस जो है ना वो उनको लेटा देता है, और इज्तमाही तौर पर भी एक वायरस जो है वो उनके पूरे निजाम को लिटा देता है, तो वो तकब्बुर करें तो इसका मतलब यही है ना कि अभी दिमाग सड़ा हुआ है बिल्कुल ही। ठीक है ना, बिल्कुल ही अकल शरीफ जो है ना वो यानी हाथ सब कुछ धो धुला करके उससे फारिग हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हजरत हकीम उल उम्मत जो थे वो इन हकीकतों को माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनके ऊपर खोला था, तो उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। चुनाचे वो बाहम कहने लगे कि क्या हम ऐसे दो शख्सों पर जो हमारी तरह के आदमी हैं उनमें कोई बात इम्तियाज की नहीं ईमान ले आए और उनके फरमाबरदार बन जाए। ठीक है, अपने अंदर तकब्बुर है या नहीं है कैसे मालूम होगा भाई? जिस तरीके से आपके चेहरे के ऊपर कोई दाग है या नहीं है और आपकी टाई की नॉट जो है वो अच्छी बंधी हुई है कि बंधी हुई है कि नहीं बंधी हुई है, राइट? और आपके जो सर के बाल हैं वो अच्छी तरह से सेट हुए हुए हैं कि नहीं सेट हुए हुए हैं, वो कैसे पता चलते हैं? कैसे पता चलता है? इसका जवाब अगर कोई यहाँ पे दे दे, कैसे पता चलती हैं जी ये तीन चीजें, मुंह पे दाग और टाई का नॉट और सर के बाल, कैसे पता चलते हैं ठीक है कि नहीं है? आईने से पता चलते हैं, है ना भाई? आईने के सामने खड़े होते हैं तो पता चलता है कि सब सही है कि सब गलत है, या कुछ सही है कुछ गलत है। उसी तरीके से अल्लाह ताला ने रूहानी इलाज और रूहानी क्या कहते हैं मेकअप, रूहानी सेटिंग, इन सब के लिए भी अल्लाह ताला ने आईने रखे। ठीक है ना, उन आईनों के सामने खड़े होंगे और उन आईनों में देखेंगे, ठीक है ना, तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ना, और जब पता चलेगा तभी फिर उसको ठीक करने की मेहनत करेंगे। ठीक है, अल-मुमिनु मिरातुल मुमिन, ठीक है, मोमिन मोमिन का आईना है। इसमें पहला मोमिन जो है ना वो एक डिफरेंट किस्म का आईना और दूसरा मोमिन है वो दूसरे किस्म का आईना, यानी मोमिन मोमिन का आईना है का मतलब हर मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। अब कोई मोमिन गुनाहगार मोमिन है उसका आईना जो है वो गर्द आलूद होता है, उसके ऊपर जो है वो उसके अपने गुनाहों की वजह से एक एक एक, एक चढ़ा हुआ होता है। तो जिस आईने के ऊपर जो है वो मिट्टी गर्द और ये सारी चीजें चढ़ी हुई हो, तो अब उसके सामने कोई आके खड़ा हो जाए तो भाई उसको तो समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ऐसे आईने में तो रिफ्लेक्शन नहीं होती है ना। तो इस वजह से इस्लाह के लिए जिस मोमिन को इस्तेमाल करना होता है वो मोमिन ऐसा होना चाहिए कि जिसका अपना आईना जो है ना वो शफाफ। ठीक है, बस ये आईने में थोड़ी सी तफसील है, लेकिन आईने के बगैर इस्लाह। दुआएं पढ़ने से, दुआएं दुआएं जो पढ़ते हैं ना, दुआएं जो मांगते हैं अल्लाह ताला से, उससे फायदा क्या होता है? एक तो सवाब मिलता है, ठीक है ना, अल्लाह ताला से दुआ मांगने है तो भाई अल्लाह ताला बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश। और उससे दूसरा फायदा क्या होता है कि अल्लाह ताला ना इन दुआओं की बरकत से फिर हमें आईने अता फरमा देते हैं। अगर हम इखलास के साथ वाकई अल्लाह से मांगे ना तो हमें अल्लाह ताला आईनों तक पहुंचा देते हैं, या आईनों को आजकल तो माशाल्लाह आईने हम तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, तो ये दुआओं का फायदा होता है। दुआएं ये नहीं कि दुआएं बेफायदा होती हैं, दुआएं नहीं मांगनी चाहिए, दुआएं जरूर मांगनी है, लेकिन बड़े ऐसे मांगे कि अल्लाह ताला भी ना अता करने के ऊपर तैयार हो जाएंगे। हाँ, ये तो वाकई ऐसे मांग रहा है कि इसको ना दूं ये कैसे हो सकता है, ये तो बड़े इखलास के साथ मुझसे मांग रहा है और बड़ी यानी इस बात को अहम समझ करके मुझसे मांग रहा है, तो मैं तो जरूर उसको दूंगा ये। ठीक है, तो दुआएं मांगने की थोड़ी सी तफसील होती है। उम्र भर गालिब यही बोल बोल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। माशाल्लाह, गालिब का शेर जी, माशाल्लाह साहिब दौक हैं आप। कल घर में भी बच्चों को जरा मिर्ज़ा गालिब के कुछ अशआर या आज पढ़ के सुना रहा था। चले, तो इन लोगों ने कहा कि जी हम इनके फरमाबरदार कैसे बन जाए, हालांकि उनकी कौम के लोग तो खुद हमारे जेर हुक्म हैं, यानी हमको तो खुद उनकी कौम पर रियासत हासिल है। ठीक है, रियासत का मतलब सुल्तान हासिल है, ताकत हासिल है, उनकी कौम जो है वो मकलूब है, हम गालिब हैं। तो यानी तफसीरन हजरत ने इस बात को लिखा है कि ये जो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया ना कि उनकी कौम के लोग तो हमारे जेर हुक्म है, तो इसकी तफसीर लिखी यानी हमको तो खुद उनकी कौम पर रियासत हासिल है, फिर उन दोनों के इक्तदार और रियासत को हम कैसे तस्लीम कर सकते हैं? ठीक है, तो उन लोगों ने, हजरत फरमाते हैं कि उन लोगों ने रियासत दीनिया को रियासत दुनियविया पर कयास किया कि हमको एक किस्म की रियासत यानी दुनियवी हासिल है तो दूसरी किस्म के भी हम ही मुस्तहिक हैं, यानी हमें रियासत दुनियाविया, दुनियावी माइट हमें हासिल है, दुनियावी इकतदार हमें हासिल है, तो दीनी इकतदार भी हमारे पास ही होना चाहिए। और ये मूसा और हारून कहाँ से आ गए भाई, यतीम भी हैं, और जो है वो मूसा का तो ये हाल है कि बोलना भी नहीं आता, राइट। अच्छा, इसके ऊपर एक एक बड़ा अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई थी, बच्चों की क्लास में जब हम ये पढ़ा रहे थे तो एक अजीब नुक्ता दिल में आया कि मूसा जो है इनकी खसूसियत क्या है, तमाम अंबिया में इनको एक खसूसियत हासिल है जो किसी दूसरे नबी को हासिल नहीं है इस दुनिया की जिंदगी में, दुनिया के अंदर होते हुए, ठीक है, कि उन्होंने अल्लाह ताला से कलाम किया, राइट। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है, ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा जाता है, नबी अलैहिस्सलाम को हबीबुल्लाह कहा जाता है, राइट। और मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है, राइट, अल्लाह से कलाम करने वाला। और मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर नुक्स क्या था जी, मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ताला ने एक नुक्स पैदा कर दिया था बचपन के अंदर ही, राइट। वो क्या था, कलाम नहीं कर सकते थे, राइट, लुकना लुकनत थी, स्टटर करते थे, स्टैमर करते थे, राइट। अल्लाह ताला ने अपने कलाम का शर्फ किसको दिया कि जिसको कलाम करना नहीं आता, राइट। कोई दूसरा नबी है, कोई दूसरे नबी हैं कि जिनके साथ ये वाली प्रॉब्लम थी, कोई एक नबी ऐसा नहीं, राइट। और कोई दूसरा नबी है कि जिसको अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर अपना कलीम बनाया हो, कोई दूसरा नबी नहीं, राइट। तो शायद अल्लाह ताला हमें ये बताना चाहते हैं कि ये जो दुनियावी नुक्स तुम्हारे अंदर होते हैं ना, मेरी तरफ से जो है, ये नहीं कि जो कि तुमने अपनी हरकतों यानी शराब पी पी करके अपनी अकल को खराब कर लिया हो तो अब ये भाई तुम्हारी अकल के अंदर नुकसान गया, तो ये तुम्हारे अपने हरकत की वजह से नुकसान है, राइट। सिगरेट पी 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 करके तुमने जो है वो अपने फेफड़ों का बेड़ा गर्क कर लिया हो तो ये तुम्हारे अंदर नुकसान आ गया, भाई ये तुम्हारी अपनी गुनाह की वजह से ये तुम्हारे अंदर नुकसान है। मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान में जो नुक्स था ये अल्लाह की तरफ से था, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने उनको क्या मुकाम अता फरमाया, यानी हमारे अंदर कोई ऐसा अगर नुक्स है जो कि अल्लाह की वजह से है, अल्लाह की तरफ से है, तो उसके ऊपर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके ऊपर अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और सब्र करते रहें तो अल्लाह ताला उसी नुक्स को हमारे लिए कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन का सबब बना देंगे, है ना, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया। बल्कि कुछ लोग बड़े परेशान होते हैं जी, बीमार हो गए जी, रोजा नहीं रख सकते, ठीक है, बीमार हो गए जी, फलाना नेकी का काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उनको तो इस तरह से भी सोचना चाहिए कि भाई अगर आप रोजा रखते या कोई नेकी का काम करते, ठीक है ना, जो कि हम खुद करते हैं वो नेकी का काम, तो अब उस काम को कबूलवाना भी तो होता है भाई, राइट। क्या मतलब कि नियत जो है वो खालिसतन अल्लाह के लिए होनी चाहिए, है ना, और तरीका जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, और भी है ना, तकब्बुराना ख्याल नहीं होने चाहिए, और जो है वो यानी एक एक काम को कबूलवाना भी होता है और उसके लिए अच्छी खासी जो है वो आप सोचते चले जाएं, उसकी तफसीलात खुलती चली जाएंगी, तो कर करके तो ये हाल होता है। और अगर आप करने की जुस्तजू रखते हैं, लगन रखते हैं, नियत रखते हैं, लेकिन पड़ गए बीमार, ठीक है ना, और बीमार पड़ के आप वो काम ना कर सके, तो अब क्या है, अब उसके अंदर आपको अपनी नियत को खालिस रखना है उस वक्त, यानी बीमारी के अंदर जो आप अमल नहीं कर रहे हैं तो इसमें नियत खालिस रखने की कोई मेहनत ही नहीं करनी, क्योंकि बगैर अमल किए हुए वो अमल जो है वो आपकी तरफ से लिखा जा रहा है, और ये जो लिखा जा रहा वाला अमल है ना, इसके अंदर ना कबूल होने की कोई कोई एहतमाल ही नहीं, ना कबूल होने का, राइट। इसलिए कि बीमारी तो अल्लाह की तरफ से आई थी, ठीक है ना, और आप तो अगर बीमार ना होते तो आप तो वो अमल करने के का इरादा रखते थे, ठीक है, यानी ना किए बगैर जो अमल हो रहा, जो अमल लिखा जा रहा है ये कबूल ही कबूल है, जबकि करके जो अमल किया जा रहा है उसकी कबूलियत के अंदर शक है, ठीक है ना। तो भाई अल्लाह ताला का शुक्र, जब तो सब्र करने वाला जो होता है ना उसको तो फिर अल्लाह ताला बिला हिसाब अजाता है। तो बहरहाल तो मूसा अलैहिस्सलाम जो थे तो वो ऐसे थे। अच्छा, अब इन लोगों ने क्या किया, हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने एक बहुत گہرا نقطہ اور بڑا زبردست نقطہ یہاں پہ لکھ دیا ہے. فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ریاست دینیہ کو ریاست دنیاویہ پر قیاس کیا کہ ہم کو ایک قسم کی ریاست یعنی دنیاوی حاصل ہے تو دوسری قسم کے بھی ہم مستحق ہیں, اور جب ان کو دنیاوی ریاست نہیں ملی یعنی ان بنی اسرائیل کو جب دنیاوی ریاست نہیں ملی تو دینی کیسے مل سکتی ہے, اور فساد اس قیاس کا ظاہر ہے. یعنی انہوں نے جو قیاس کیا نا یہ فاسد قیاس تھا, غلط قیاس تھا, غلط فہمی تھی ان کی, ٹھیک ہے نا. اب اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کو ہم ریورس دیکھیں کہ ریاست دینیہ اگر کسی کو ملے تو کیا اس کے اوپر ریاست دنیاویہ کو قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کسی کے پاس دینی ریاست ہے, دینی اتھارٹی ہے تو اس کے پاس دنیاوی اتھارٹی بھی ہونی چاہیے؟ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام نے یہی کام کیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے معاملے میں جو ون آف دا دلائل کہ جس کی بنیاد پر صحابہ کرام نے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر بنایا, امیر المؤمنین بنایا, خلیفۃ الرسول بنایا, وہ کیا تھا کہ صدیق اکبر کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں نماز کی امامت عطا فرمائی تھی, اپنی موجودگی میں نماز کی امامت عطا فرمائی تھی جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیمار تھے اور نماز کی امامت کے لیے تشریف نہیں لا سکے تھے. تو فرمایا تھا صدیق اکبر سے کہو, ابو بکر سے کہو کہ میری جگہ پر وہ نماز کی امامت کرے. تو جب ہمارے نماز کی امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کروائی تھی تو ہمارے دنیاوی امور میں بھی ہمارے امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بنے, رائٹ. تو دنیا کو دین پر قیاس کر کے رکھا کہ جب دنیا کی دین کی امامت ہے, یا دوسرے الفاظ جو ہے وہ اپوزٹ استعمال کریں گے لیکن معنی انشاءاللہ امید ہے سب کو سمجھ میں آتا ہوگا کہ جب کوئی دین کا امام ہوتا ہے نا تو اس کو تو آپ دنیا میں امام بنا سکتے ہیں. ظاہر ہے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی کچھ پولیٹکس بھی آتی ہے, سیاست بھی آتی ہے, امور کا بھی کچھ ان کو علم ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. خالی یہ کوئی تھوڑی کہ نماز پڑھانی آتی ہے تو ہر جو ہے وہ مسجد کا امام کو جو آپ بنا کر کے آپ اٹھا کر کے جو ہے وہ شہر کا میئر تو نہیں بنا دیتے نا, کیونکہ بس مسجد میں امام نماز پڑھاتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس کے اندر دین کی امامت ہے, صرف یہ نہیں کہ مسجد کا امام ہے, بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نمائندگی نماز کے اندر بات ہو رہی تھی نا, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹ ورکس دی ادر وے اراؤنڈ, اٹ کین ورک دی ادر وے اراؤنڈ, ٹھیک ہے نا, بٹ اٹ ڈز ناٹ ورک دس وے اراؤنڈ. کہ اگر دنیا کی امامت ہے تو دین کی امامت بھی انہیں کے پاس ہونی چاہیے. یہ تو بالکل ہی شیطانی اور دجالی نظام. اگر دنیا کی امامت ہے, دنیا میں جو ہے وہ ماشاءاللہ انہوں نے کوئی کامیابی حاصل کر لی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی دین میں بھی انہیں کو ہم اپنے آگے رکھیں گے, رائٹ. یہ تو بالکل ہی نہیں چلتا. اور یہ غلطی جو تھی نا یہ تو فرعون اور اس کے ساتھ کے لوگوں نے کری تھی. ٹھیک ہے جی, ٹائم ذرا زیادہ ہو چکا ہے تو ہم یہاں پہ اپنی کلاس روکتے ہیں, باقی انشاءاللہ یہیں سے کل پڑھنا شروع کریں گے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.